समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे लेकर। आज के इस अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार देवेंद्र, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज ऑन द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein we give you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 4th of July. Quote of the day, just one small positive thought in the morning can change your whole day, Dalai Lama. On that note, let's begin our program. First, the headlines.
Ji.
Prime Minister Narendra Modi has said that the journey of Indian community in Trinidad and Tobago is about courage. Addressing an Indian community event in Trinidad and Tobago this morning, Mr. Modi said their ancestors faced hardships with hope and carried Ramayana in their hearts. He said they were not just migrants, but messengers of a timeless civilization.
The journey of the Indian community in Trinidad and Tobago is about courage. The circumstances your ancestors faced could have broken even the strongest spirits, but they faced hardships with hope. They met problems with persistence. They left the Ganga and Yamuna behind, but carried the Ramayana in their hearts.
Prime Minister reached the port of Spain in Trinidad and Tobago for the second leg of his Five Nation tour last night in a special gesture. Prime Minister was received on his arrival at the airport in Port of Spain by Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, along with members of a cabinet and several other dignitaries. Prime Minister was accorded a ceremonial guard of honour and welcomed with special cultural performances. This is his first visit to the country as Prime Minister and the first bilateral visit at the Prime Ministerial level to Trinidad and Tobago since 1999. During his two-day visit, the Prime Minister will hold talks with President of Trinidad and Tobago, Christine Carla Kangalu, and Prime Minister Kamala Prasad Bisesar. Prime Minister will address a joint session of the Parliament of Trinidad and Tobago. The visit will impart fresh impetus to the deep-rooted and historical ties between the two countries.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के अगले चरण में आज अर्जेंटीना जाएंगे। वे राष्ट्रपति जेवियर माइली के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। अर्जेंटीना भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है और G20 में भी उसका निकट सहयोगी है। पिछले 57 वर्षों में अर्जेंटीना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। दोनों नेता रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित प्रमुख मुद्दों पर चल रहे सहयोग की समीक्षा करने और साझेदारी बढ़ाने के तरीकों की खोज करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में होगा, उसके बाद 8 जुलाई को महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री भाटिया ने कहा कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण होगी, जहां वो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।
Our focus in all these BRICS summits has been global governance reform, and we are going to push for the same in this summit too. It's a common agenda that we have with Brazil. Besides that, Brazil as a host has also proposed discussions on artificial intelligence, climate change, as they are going to host COP30 in November this year in Brazil. So these will be the core areas of discussions.
Information and Broadcasting Ministry has proposed amendments to the policy guidelines for television rating agencies originally issued in 2014. The proposed draft has removed some restrictive provisions for media houses to allow more players to democratize and modernize the television audience measurement ecosystem in the country. Currently, Broadcast Audience Research Council, BARC, is the only agency providing TV ratings. The proposed amendments aim to allow multiple agencies to foster healthy competition, bring in new technologies, and provide more reliable and representative data, especially for connected TV platforms. The proposed reforms also aim to ensure that TRP system reflects the diverse and evolving media consumption habits of viewers across the country. The ministry has invited feedback from stakeholders and the general public within 30 days of the issuance of the draft. Currently, India has approximately 230 million television households. However, only about 58,000 people meters are presently used to capture viewership data, representing just 0.025% of the total TV homes.
छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को खासतौर पर बस्तर और सरगुजा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्य में कल राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने डिजिटल परिवर्तन के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। श्री साय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 रोडमैप के साथ जुड़े विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन का एक प्रमुख स्तंभ बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुशल, पारदर्शी और सुलभ शासन सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 के तहत सरकार अपनी मौजूदा 85 ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करेगी और जल्द ही इसके तहत 250 ऑफलाइन सेवाएं शामिल की जाएंगी, जिससे नागरिक को इन प्रमुख योजनाओं और सुविधाओं का लाभ घर बैठे ही मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डिजिटल विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए राज्य डेटा सेंटर को Tier 3 मानकों पर अपग्रेड करने का भी निर्देश दिया।
वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति को नई गति देने पर बल दिया है। राज्य सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों, विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभागों में नए मोबाइल टावर लगाने तथा फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने जैसे कार्यों में तेजी लाई जाए। आने वाले समय में राज्य में समय सीमा के भीतर चरणबद्ध रूप से 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 के माध्यम से वर्तमान में विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करते हुए 250 अन्य ऑफलाइन सेवाओं को भी ऑनलाइन सेवाओं में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन प्राप्त होगा तो इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि कार्यालय आने जाने में लगने वाला खर्च भी कम होगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
The US Congress has passed President Donald Trump's sprawling tax and spending bill in a significant and hard-fought victory for the president and his domestic agenda. After a grueling session on Capitol Hill, the House of Representatives passed the bill by a vote of 218-214 last night. It was approved by the Senate on Tuesday by one vote. Trump had given the Republican-controlled Congress a deadline of 4th of July to send him a final version of the bill, which he described as big, beautiful bill, to sign into law. The Congressional Budget Office estimates the bill could add $3.3 trillion to federal deficits over the next 10 years and leave millions without health coverage, a forecast that White House disputes. The legislation makes savings through making cuts to food benefits and health care and rolling back tax breaks for clean energy projects. Speaking to reporters, Trump said the bill would turn his country into a rocket ship. He's expected to sign it into law at a ceremony on the national holiday today.
और इन महत्वपूर्ण खबरों के बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ खेल खबरों की। बर्मिंघम के एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मेजबान इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 77 रन बनाए थे। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 587 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। कप्तान शुभमन गिल ने 269 रन बनाकर इंग्लैंड में दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय और एशियाई कप्तान बनकर इतिहास रचा। इंग्लैंड 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
World champion D. Gukesh caused another sensation in the chess world by defeating world number 1 and 5-time champion Magnus Carlsen in the 6th round of the rapid section of the Grand Chess Tour's Super United Rapid and Blitz Croatia yesterday. A few days after upsetting Carlsen at home in the Norway Chess 2025, Gukesh got the better of the Norwegian star once again, through this time in rapid chess in Zagreb. This was the 5th consecutive win for the Grandmaster from Chennai and helped him take sole lead with 10 points. Jean-Christophe Duda drew his game against Wesley So and now sits in the second place with 8 points. Fabiano Caruana finally broke through with his first win of the tournament, beating Noderbek Abdusattarov with the black pieces in another round 6 matchup.
और अब हम चलते हैं महानगरों की ओर। सबसे पहले अनीता से सुनते हैं समाचार बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के।
The Air Intelligence Unit of Chennai Customs intercepted a passenger who had arrived from Bangkok, Thailand by Thai Airways flight. The official suspected wildlife smuggling in the checked-in trolley bag and 2 pet bags were found concealed beneath chocolates and other food items. Further inspection revealed 2 live monkeys of different species identified as Agile Gibbon and Eastern Grey Gibbon hidden inside the pet bags. The import of such wildlife without valid authorization is prohibited under the Wildlife Act and the Customs Act. The animals were deported back to Thailand. The passenger has been arrested and has been remanded to judicial custody. Moving on to Bengaluru, the inauguration of 393 Asha Kiran Vision Centers in the state of Karnataka was held in Bengaluru yesterday. These eye testing centers will render service of free eye checkups, cataract surgery services, and distribution of spectacles for the needy. The project is to establish permanent vision centers in district hospitals, taluk hospitals, and community centers. There are 2,421 primary health centers across the state. The rural people will get service of this eye care project through these centers. This health project, with the financial assistance of central government, is inaugurated by Deputy Chief Minister of Karnataka, D.K. Shivakumar, during a function held in Govindaraj Nagar of Bengaluru City. And now for news from Hyderabad, a convergence meeting regarding Operation Muskan 11-2025 was held in Hyderabad. The meeting focused on identification and rescue of children involved in child labour and bonded labour, tracing and rehabilitation of missing children, rescue and protection of trafficked children and children involved in street begging. About 28 divisional police teams have been constituted across Hyderabad city. Each team is specially trained and sensitized for handling children in need of care and protection and tracing of missing children through Darpan app. The Deputy Commissioner of Police Women's Safety Wing reiterated the commitment of Hyderabad city police towards child safety, prevention of exploitation, and building a child-friendly ecosystem through inter-agency collaboration and community participation. And now for Metro City news from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Dhrivin.
जी अनीता, दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से आयु पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं देने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंध में आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के पर्यावरण को स्वच्छ करेगी और यहाँ के वाहनों को जब्त नहीं होने देगी। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आयोग को अवगत कराया है कि जो स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए गए हैं वो एक मजबूत प्रणाली नहीं है और उनके साथ अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई है।
उनको हमने बताया कि जो एएमपीआर कैमरे लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं ये स्पीकर्स भी मैनुफलेटेड हैं। एंड ऑफ वाइट लाइफल्स जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिनपे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों में झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबस्ट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल भारत मंडपम में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इसके साथ साथ वृक्षारोपण अभियान की भी शुरुआत की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली के पर्यावरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और नई दिल्ली के सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज उपस्थित थे। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 2 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 13 देसी कट्टे, 1 पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस और सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाला दोपहिया वाहन बरामद किया है। चलते हैं मुंबई की तरफ और यहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को महात्मा फुले अक्षय ऊर्जा और अवसंरचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड महाप्रीट को टिकाऊ भविष्य के लिए तैयार परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में संसाधनों को फैलाने के बजाय क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञता विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये निर्देश विधान भवन में एक समीक्षा बैठक के दौरान आया जहां महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम की सहायक कंपनी महाप्रीट के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था। मुख्यमंत्री ने 2026 में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग प्रतियोगिता पुणे ग्रैंड चैलेंज टूर के लिए राज्य सरकार के समर्थन की घोषणा की है। पुणे जिला प्रशासन और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम का उद्देश्य पुणे को वैश्विक खेल और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, खेल मंत्री दत्तात्रेय भरणे की मौजूदगी में पुणे जिला कलेक्टर और CFI के बीच राज्य विधानमंडल में इस आशय का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विश्वास जताया कि ये आयोजन अगले 3-4 वर्षों में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आयोजन बन जाएगा और 200 से अधिक देशों के साइकिलिंग प्रशंसकों को पुणे की संस्कृति, परिदृश्य और विरासत को देखने में मदद करेगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए परिवहन मंत्री और ST निगम के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने कल विधान परिषद में घोषणा की कि सरकार सार्वजनिक परिवहन बेड़े को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों में 25,000 नई बसें खरीदने की योजना बना रही है। सालाना 5,000 बसें खरीदी जाएंगी। विधायक अनिल परब द्वारा उठाए गए एक चर्चा का जवाब देते हुए सरनाईक ने कहा कि शहरी, ग्रामीण और तालुका स्तरीय डिपो सहित राज्य भर में 840 बस डिपो के विकास के लिए 2 महीने के भीतर समावेशी निविदाएं जारी की जाएंगी। और चलते हैं अब कोलकाता, जहां राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है। गुरुवार को कोलकाता के साइंस सिटी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता और सांसद तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी उपस्थित थे। इस चुनाव से पहले केंद्रीय शिक्षा और टोनर राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए मतदाताओं से आह्वान किया। और श्रोताओं, महानगरों की खबरें हमने सुन ली, महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं क्योंकि इस समय मॉनसून का सीजन चल रहा है और मॉनसून में जहां पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो रही है अनीता, और कुछ जगहों पर लोग अभी बारिश के लिए इंतजार कर रहे हैं।
इवन इन दिल्ली वी आर वेटिंग फॉर द
मॉनसून। जी जी जी, कई क्षेत्र हैं जहां पर बरसात अभी कम हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। सुबह कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हुई भी है पूर्वी दिल्ली में। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 37 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं मुंबई में बादल छाए रहेंगे और मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। कोलकाता में सामान्यतः बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है और यहां तापमान 25 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। अनीता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा रहने वाला है?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। The minimum temperature was 29 degrees Celsius and the maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is also expected to have a generally cloudy sky, but with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
जी, और अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की। आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई के दिन अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है। इसे राष्ट्रीयता के वार्षिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ये अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा और संविधान को अपनाए जाने का भी स्मरण है। इसी दिन यानी 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों के ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने की घोषणा की थी।
इन द ईयर 1855 वॉल्ट विटमैन्स फर्स्ट एडिशन ऑफ द सेल्फ पब्लिश्ड लीव्स ऑफ ग्रास वाज प्रिंटेड कंटेनिंग अ डज़न पोएम्स। इन 1884 इन अ सेरेमनी हेल्ड इन पेरिस The completed Statue of Liberty was formally presented to the U.S. ambassador as a commemoration of the friendship between France and the U.S. In 1894, the Republic of Hawaii was established.
जी, वर्ष 1947 में 4 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर मुहर लगी थी।
In 1966, the Loving Spoonful released their first heat record summer in the city. And in 1997, NASA's Mars Pathfinder became the first U.S. spacecraft to land on Mars in more than 2 decades after traveling 120 million miles in 7 months.
जी, और वर्ष 1998 में जापान ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्लेनेट बी नामक अपना प्रथम अंतराग्रहिक मिशन भेजा था। और इसी साल 4 जुलाई के दिन ब्रिटेन के एक पावर बोट द केबल एंड वायरलेस एडवेंचर ने 74 दिन 20 घंटे और 38 मिनट में यात्रा पूरी करके सबसे तेजी से विश्व भ्रमण का नया रिकॉर्ड बनाया था। 2005 में आज के दिन ऑस्ट्रेलिया में डॉल्फिन की एक नई प्रजाति स्नबफिन खोजी गई थी। और इतिहास के बाद अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है और जिन्होंने अपने कार्यों, विचारों या दर्शन से समाज को प्रेरित और प्रभावित किया था। भारत की संस्कृति की प्राचीनता विश्व में सबसे अधिक है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अनेकों महापुरुषों और मनीषियों ने भारतीय संस्कृति को संवर्धित करने में योगदान दिया है। आज हम एक ऐसे ही महापुरुष, मनीषी और तत्ववेत्ता का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने भारत के धर्म, ज्ञान और दर्शन को संबल दिया। वो महापुरुष हैं युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी। वेदांत और आध्यात्म के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद की आज पुण्यतिथि है। एक देशभक्त और सन्यासी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण कर यहाँ की स्थितियों को गहराई से समझा। अमेरिका के शिकागो में 1893 में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व को भारतीय दर्शन से परिचित कराने के लिए हुआ था। मंच पर उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन के आरंभ में जैसे ही कहा मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों, तो उनके इन शब्दों ने सबका दिल जीत लिया और सभी भारतीय संस्कृति के सामने नतमस्तक हो गए। इसके बाद भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ। बाद में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी समस्त मानवता के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। भारत के उत्कर्ष के स्वप्न दृष्टा महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का 4 जुलाई 1902 को देहावसान हो गया।
विवेकानंद इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न इंडियन थिंकर्स। ही वाज अ प्रोमिनेंट फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर एंड द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोपोनेंट ऑफ वेदांत फिलोसफी अब्रॉड। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। एंड लाइक यू मेंशनड, celebrated as the patriotic saint, his birth anniversary is observed in India as the National Youth Day.
Ji.
Today is also the death anniversary of Marie Curie, the Polish and naturalized French physicist and chemist who conducted pioneering research in radioactivity. She was the first woman to win a Nobel Prize, the first person to win a Nobel Prize twice, and the only person to win a Nobel Prize in two scientific fields. She was born in Warsaw, in what was then the Kingdom of Poland, part of the Russian Empire. She studied at Warsaw's clandestine flying university and began a practical scientific training in Warsaw. Mary won the 1911 Nobel Prize in Chemistry for a discovery of the elements polonium and radium using techniques she invented for isolating radioactive isotopes. Under her direction, the world's first studies were conducted into the treatment of neoplasms by the use of radioactive isotopes. She founded the Curie Institute in Paris in 1920 and the Curie Institute in Warsaw in 1932. Both remain major medical research centers.
जी, संविधान सभा की महिला सदस्यों में शामिल अम्मू स्वामीनाथन की आज पुण्यतिथि है। अम्मू स्वामीनाथन उन 15 महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने महिलाओं के मुद्दों पर मंथन में संविधान सभा में अहम भूमिका अदा की। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म 1894 में केरल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में वो गिरफ्तार की गई। भारत 1946 में आज़ादी के पहले मद्रास से संविधान सभा के लिए उन्हें चुना गया और स्वतंत्रता के बाद वो 1952 में प्रथम लोकसभा के लिए और उसके बाद 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 1960 से 1965 के बीच भारत स्काउट्स और गाइड्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों में भारत की सद्भावना राजदूत के रूप में भी कार्य किया। जातिगत मानदंडों का उल्लंघन, महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक तथा उत्तराधिकार, विरासत और विवाह से संबंधित कानूनों और विधेयकों में सुधार का आह्वान किया। महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और मताधिकार के लिए लड़ने हेतु 1917 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर महिला भारतीय संघ की स्थापना की। उनका निधन 1978 को हुआ और संविधान सभा के लिए चुनी गई पहली और एकमात्र दलित महिला दक्षिणानी वेलायुधन की आज जयंती है। आज के दिन दो ऐसी महिलाओं से जुड़ा हुआ है आज का दिन जिन्होंने भारत के संविधान को आकार देने में एक महिला के नाते, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के प्रतिनिधि के नाते अहम भूमिका अदा की। आपका जन्म 4 जुलाई 1912 को कोचीन के बुलगाटी द्वीप पर हुआ था। वो शोषित वर्गों की नेता थी। साल 1945 में दक्षिणानी वेलायुधन को कोचीन विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया और 1946 में 32 वर्षीय दक्षिणानी वेलायुधन संविधान सभा की सबसे युवा सदस्य बनी। संविधान सभा की पहली बैठक में उन्होंने कहा था, संविधान का कार्य इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग भविष्य में किस तरह जीवन जिएंगे। मैं आशा करती हूं कि समय के साथ ऐसा कोई समुदाय इस देश में न बचे जिसे अछूत कहकर पुकारा जाए।
Today is also the death anniversary of Barry Eugene White, the American singer-songwriter, a two-time Grammy Award winner known for his bass voice and romantic image. His greatest success came in the 1970s as a solo singer with the Love Unlimited Orchestra, crafting many enduring R&B, soul and disco songs such as his two biggest hits, Can't Get Enough of You, Babe, and You're the First, the Last, My Everything. White recorded 20 studio albums during the course of his career, while multiple versions and compilations were released worldwide that were certified gold, 41 of which attained the platinum status. White had 20 gold and 10 platinum singles with worldwide record sales in excess of 100 million records, and he's one of the best-selling music artists of all time. I'm playing a snippet from Just the Way You Are.
We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just.
भारतीय स्वतंत्रता सेनानी धन सिंह गुर्जर की आज पुण्यतिथि है। मेरठ क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ था। उस दिन मेरठ में धन सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। धन सिंह कोतवाल जनता के संपर्क में थे और उनका संदेश मिलते ही हजारों की संख्या में क्रांतिकारी रात में मेरठ पहुंच गए और आखिर में धन सिंह गुर्जर को इस क्रांति के पश्चात सरकार ने धन सिंह को मुख्य रूप से दोषी ठहराया। इसके बाद धन सिंह को गिरफ्तार कर मेरठ के एक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया था।
अपनी जान पे जिसे पहन झांसी की रानी, मिट गई अपनी आन पे। आज जो
उसी को पहन के निकला, पहन के निकला।
श्रोताओं, हिंदी फिल्मों में एक ऐसा युग भी रहा जब धार्मिक फिल्मों का बोलबाला था। उस समय फिल्मी गीतों को किसी तरह से भजन से कम नहीं माना जाता था, और ऐसे गीतों को लिखने वाले गीतकारों में अग्रणी थे पंडित भरत व्यास। आज उनकी जयंती है, उनका जन्म 1918 में 6 जनवरी आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1918 को राजस्थान के बीकानेर में। और इसी खूबसूरत गीत के साथ अब आज सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए हमें अनुमति।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day.
Namaskar. Namaskar.